بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ آج آپ پویتر قرآن مجید کے سورہ معارج کی 19 سے لے کر 29 آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ منشیہ بڑا لوبھی ہے، جب اسے پیڑا اور کشتی ہوتی ہے تو چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اور جب اسے دھن سمپتی مل جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، سوائے ان واستوک نمازیوں کے کہ جو سدیو نماز میں اپنی آیو بتاتے ہیں اور جن کی سمپتی میں ایک اسپشٹ ادھیکار نردھارت ہوتا ہے۔ مانگنے والے دردروں اور نہ مانگنے والے ونچتوں کے لیے، اور جو لوگ پرلے کے دن کی پشٹی کرنے والے ہیں، اور جو اپنے پالنہار کے دنڈ سے ڈرنے والے ہیں، कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्यभिचार से बचाते हैं।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। फेसबुक पर हमारा पेज है facebook.com/irib हिंदी। और अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओ, आज बुधवार है, आबान मास की 14, रबी उल अव्वल की 18 और नवंबर की 4 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। हमेशा की तरह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे, उसके बाद आप राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुन सकेंगे। राजनीतिक चर्चा के बाद हम आपको सुनवाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा, और हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल, जिसमें फेसबुक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय पर चर्चा की जाएगी। और अब आप रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा है कि तेहरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में क्या हो रहा है और कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। IRGC ने बुधवार को एक नए मिसाइल सिस्टम का अनावरण किया है जो निरंतरता के साथ फायर करने की क्षमता रखता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना जारी है और अब तक जो बाइडेन ट्रंप से आगे चल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। और अब आप हसन अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामिक क्रांति संरक्षक बल IRGC ने बुधवार को एक नए मिसाइल सिस्टम का अनावरण किया है जो निरंतरता के साथ फायर करने की क्षमता रखता है। IRGC के प्रमुख जनरल सलामी की उपस्थिति में ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम का अनावरण किया गया जो दूर मारक क्षमता वाले मिसाइलों को निरंतरता के साथ फायर करने की क्षमता रखता है। ये मिसाइल सिस्टम दुनिया में अपने प्रकार का पहला है और मिसाइलों की बारिश की क्षमता रखता है। इस अवसर पर IRGC के प्रमुख जनरल सलामी ने कहा कि हमारे मिसाइलों की उड़ान से दुश्मन थर्रा जाता है और हमारी मिसाइल शक्ति दुश्मन को पीछे हटाने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत आधार और हमारे देश की विश्वस्त सुरक्षा और भयानक शक्ति है, जिसकी मदद से हम अपने राजनीतिक संकल्प का दुश्मन के सामने प्रदर्शन करते हैं और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भी करते हैं। जनरल सलामी ने कहा कि इस्लामी क्रांति आज विकास कर रही है और दुश्मनों को पछाड़ रही है, जबकि हमारे दुश्मन पतन का शिकार होकर कमजोर हो रहे हैं, लेकिन दुश्मन पतन के समय भी गिरने वाली किसी बड़ी इमारत की तरह खतरनाक है, इसलिए हमें अपनी रक्षा शक्ति बढ़ानी चाहिए। उन्होंने दुश्मन की दुष्टता और साजिशों का उल्लेख करते हुए सेना के कमांडरों से कहा कि उंगली ट्रिगर पर रहे, हम देख रहे हैं कि दुश्मन धमकी दे रहा है, हमें उस पर अपनी शक्ति और रणनीति साबित करनी होगी और हालात पर काबू पाए बिना हम शांति व स्वतंत्रता से नहीं रह सकते।
राष्ट्रपति रूहानी ने कहा है कि अमरीका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से कई तरह की सीख मिलती है, लेकिन इन सब के बावजूद तेहरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमरीका में क्या हो रहा है और वहां कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कहा कि अमरीका को चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करे और सभी अंतर्राष्ट्रीय व बहुपक्षीय संधियों में वापस लौट आए। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि अमरीका को चाहिए कि प्रतिबंधों और धमकियों के स्थान पर सम्मान और वचन व कानून तोड़ने के बजाय अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करे। उन्होंने कहा कि अमरीका को चाहिए कि अपनी गलतियों को सुधारते हुए शांति व स्थिरता के रास्ते को चुने, ऐसा रास्ता जो क्षेत्र के साथ साथ पूरी दुनिया में शांति स्थापित करे। राष्ट्रपति रूहानी ने क्षेत्र और ईरान की उत्तरी व पश्चिम उत्तरी सीमा के नजदीक जारी अशांति के बारे में कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखना और आतंकियों एवं आतंकवादी गुटों को ईरान की सीमा से दूर रखना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने इसी तरह दुनिया के विभिन्न इलाकों में होने वाले आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों पर हमला निंदनीय है। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनादर एक निंदनीय काम है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया है कि ईरान में पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जबकि 419 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने बुधवार को देश में कोरोना के ताजा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,452 नए मामले सामने आए, जिनमें से 2,852 को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी अन्य को आवश्यक निर्देशों के साथ होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अब ईरान में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6,46,164 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ईरान में 419 लोगों की कोरोना के घातक वायरस से संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने बताया कि अब देश में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 36,579 हो गई है। उन्होंने बताया कि अब तक देश में 5,400 लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। इस बीच पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 4,80,00,000 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 12,21,000 की मौत हो गई है, जबकि 3,44,00,000 से अधिक लोग कोरोना को हरा चुके हैं। ईरान की संसद मजलिसे शुरा इस्लामी के अध्यक्ष ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के विश्वविद्यालय में हुए धमाके की कड़े शब्दों में निंदा की है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इस धमाके की कड़ी निंदा करते हुए एक हैशटैग ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि दाइश के सभी अपराधों के लिए सीधे तौर पर इस आतंकी गुट को अस्तित्व में लाने वाला अमरीका और ज़ायनी शासन जिम्मेदार है। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा है कि तकफीरी आतंकवादी गुट दाइश की अमरीका, ज़ायनी शासन और कुछ अरब देश आरंभ से ही वित्तीय सहायता कर रहे हैं। ये समाचार आपकी सेवा में रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की समाप्ति के बाद वोटों की गिनती जारी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन अपने रिपब्लिकन प्रतिस्पर्धी और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं। इलेक्टोरल वोटों के मामले में भी बाइडेन ट्रंप से 25 वोटों से आगे हैं। अंतिम आंकड़ों के अनुसार बाइडेन को जनता के 6,91,10,405 वोट और 238 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं। उन्हें जनता द्वारा डाले गए वोटों में से अब तक 50% वोट मिल चुके हैं। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि जनता की ओर से उन्हें 6,68,28,238 वोट मिले हैं। उन्हें मिलने वाले जनता के वोटों का प्रतिशत 48.4% है। इस तरह से कहा जा सकता है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। चुनाव में जीत के लिए इलेक्टोरल वोटों का आंकड़ा 270 है। क्षमा कीजिएगा, चुनाव का फैसला करने वाले कई राज्यों में अभी भी वोटों की गिनती जारी है और जब तक हर राज्य के आंकड़े सामने नहीं आ जाते तब तक विजेता की तस्वीर साफ नहीं होगी। कहा जा रहा है कि पोस्टल वोटों की वजह से पूरे चुनाव परिणाम सामने आने में काफी समय लग सकता है। इस बीच ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा है कि हम जीतने जा रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना में बड़े पैमाने पर धांधली करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से सतर्क रहने को कहा है। जो बाइडेन ने भी कहा है कि वो जीत के रास्ते पर चल रहे हैं। इस बीच कई शहरों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भारत का विवादित नक्शा ट्वीट किया है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ट्वीट करके ट्रंप समर्थक और बाइडेन समर्थक देशों को लाल और नीले रंगों में दिखाया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को जो बाइडेन के प्रभाव वाले देशों में करार दिया है। ट्रंप जूनियर ने अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दिन विश्व मानचित्र को ट्वीट किया। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। तीन चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके हैं। अब तीसरे चरण में 76 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। सभी दल तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को मधेपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे, तो क्या किसी को रोजगार मिला? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वे बिहार को बदल देंगे, तो क्या बिहार बदल दिया गया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के लिए आयोजित सभा में कहा कि हमने अपने शासनकाल में पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं में जागृति आई है और हमने महिला को स्वरोजगार देने के लिए जीविका समूह बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी सभा में कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारें सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर पैकेज कोरोना से बचाव के अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कांग्रेस और राजद के गठबंधन को अवसरवादी बताया। कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के अहम नेताओं ने भी बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। भारत में महाराष्ट्र पुलिस ने बेहद आक्रामक एंकर और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को बुधवार की सुबह उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस के अफसर संजय मोहित ने बताया कि रिपब्लिक टीवी के संस्थापक गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा एक इंटीरियर डिजाइनर अनवे नाइक और उनकी मां की मौत से जुड़ा हुआ है, जिसे पुलिस ने खुदकुशी घोषित किया था। अनवे नाइक ने सुसाइड नोट में कथित रूप से लिखा था कि वो अपना जीवन इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी और इन लोगों ने उनसे भारी रकम ले रखी है, जिसे वापस करने से वो इनकार कर रहे हैं। गोस्वामी ने इस आरोप का खंडन किया था। ज्ञात रहे कि गोस्वामी अपने शो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राष्ट्रवाद का जमकर समर्थन करते थे और विरोधियों पर चीखते चिल्लाते नजर आते थे। वे अन्य टीवी चैनलों पर भी खुलकर हमले करने से नहीं चूकते थे, जबकि भारत के वरिष्ठ पत्रकारों ने गोस्वामी की पत्रकारिता की बहुत आलोचना की है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बोबड़े ने एक मामले में अर्णब के बारे में कहा था कि हम आपकी पत्रकारिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। तकफीरी आतंकी गुट दाइश ने वियना आतंकी हमले की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 22 लोग घायल हुए थे। ऑस्ट्रियाई पुलिस ने मंगलवार को 18 जगहों पर छापे मारे और 14 लोगों को गिरफ्तार किया। सोमवार 2 नवंबर को वियना में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट या दाइश ने ले ली है। उसने अपने मुखपत्र अमाक में इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 20 वर्षीय इस हमलावर का नाम कुजतिम फेजुलाई बताया गया है और इसने राजधानी में अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की कार्रवाई में फेजुलाई भी मारा गया। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने फ्रांस की ओर से मिथ्याचारी गुट MKO और सद्दाम के समर्थन को एक सिक्के का दुरूप बताया है।
तबरीक अर्ज मुकनम बे हमे बिनंदगान अजीज व हमे अहद मिल्लत ईरान।
अमेरिका में चुनाव परिणामों की घोषणा के लिए उल्टी गिनती आरम्भ हो गई है। बिल्कुल सही से कोई नहीं जानता कि विजेता का नाम कब स्पष्ट होगा। एकता सप्ताह के उपलक्ष्य में सभाओं और जश्नों का क्रम यथावत जारी है। फिलिस्तीनियों ने रामल्लाह में बालफोर घोषणा पत्र की 103वीं वर्षगांठ पर प्रदर्शन किया। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने फ्रांस की ओर से मिथ्याचारी गुट MKO और सद्दाम के समर्थन को एक सिक्के का दुरूप बताया है। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने कहा है कि अमेरिका वर्षों से विश्व पर अपना वर्चस्व जमाने की चेष्टा में है और इस कार्य के लिए वो हर चीज को हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है। साथ ही कमर अब्बास,
ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने मंगलवार को पैगम्बर इस्लाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अमेरिका की वर्चस्ववादी नीतियों के मुकाबले में प्रतिरोध पर बल दिया। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने एकता सप्ताह और 13 आबान को साम्राज्य से मुकाबले से संबंधित बिंदुओं को बयान किया और वर्तमान समय में वर्चस्ववादी व्यवस्था के मुकाबले में इस्लामी जगत के प्रतिरोध की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया।
बोयसीन अब्ज़ारहाय कुदरत कुदरत वाकई न कुदरत पोशाली रो बायद दर खुदमुन तक़वियत कुनी मिल्लत क़वी बशे कश्मीर क़वी बशे दुश्मन मायूस खाहत शुद।
इसी प्रकार इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने इस्लामी जगत के मध्य एकता पर बल दिया और पैगंबर इस्लाम का अपमान करने के पीछे लक्ष्यों को बयान करते हुए कहा कि फ्रांस और कुछ देशों की ओर से पैगंबर इस्लाम के अपमान का समर्थन इस बात का सूचक है कि अपमान पहले से ही सुनियोजित कार्यक्रम के तहत था। इसी प्रकार ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने फ्रांस के राष्ट्रपति और इस देश की सरकार की ओर से अमानवीय सांस्कृतिक कृत्यों की ओर संकेत किया और फ्रांस की ओर से मिथ्याचारी गुट MKO और सद्दाम के समर्थन को एक सिक्के का दो रूप बताया।
दौलत फ्रांसे मियाद रैप्ट भी दे इन कज़िर रो बे हुकूक बशर व आज़ादी व इन हर।
सर्वोच्च नेता के भाषण में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि अमेरिका वर्षों से विश्व पर अपना वर्चस्व जमाने की चेष्टा में है और इस कार्य के लिए वो हर चीज को हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है। पूरी दुनिया में अमेरिका मात्र वो देश है जिसने जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी की थी जिसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। दूसरे शब्दों में अमेरिका अपने लक्ष्यों को साधने के लिए मानवता के खिलाफ तकनीक के प्रयोग में भी किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लेता। 11 सितंबर की आतंकवादी घटना के बाद अमेरिका ने आतंकवाद से मुकाबले के बहाने सबसे पहले अफगानिस्तान और उसके बाद इराक पर हमला करके इन देशों पर कब्जा कर लिया। रोचक बात यह है कि इराक और अफगानिस्तान से न केवल आतंकवाद का सफाया नहीं हुआ बल्कि अमरीकी हमलों के बाद अलकायदा और दाइश जैसे आतंकवादी संगठनों ने सिर उठाया और उनकी आतंकवादी गतिविधियों में गति आई। सऊदी अरब ने सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना 5 वर्षों से यमन की निर्दोष जनता के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर रखा है और इस गैर कानूनी युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मानवाधिकार का राग अलापने वाले कुछ देशों का समर्थन भी उसे प्राप्त है। इन सब कटु बातों को ध्यान में रखते हुए ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने बल देकर कहा है कि इस्लामी राष्ट्रों की कठिनाइयों व समस्याओं का समाधान इस्लामी एकता में निहित है।
अमेरिका में चुनाव परिणामों की घोषणा के लिए उल्टी गिनती आरंभ हो गई है। बिल्कुल सही से कोई नहीं जानता कि विजेता का नाम कब स्पष्ट होगा, परंतु अगर दोनों में दूरी अधिक नहीं रही तो विजेता के नाम के स्पष्ट होने में अधिक समय नहीं लगेगा, संभवतः कल तक हो जाएगा। कामरान नजफजादे की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही कायम रिजवी।
जो बाइडेन उस गिरजाघर गए जहां पर उनकी पहली पत्नी और संतानें दफन हैं। इसी बीच ट्रंप अपने परिजनों का आभार व्यक्त करते हैं। वे मजाक में कह रहे हैं कि अगर चुनाव में वे हारते हैं तो फिर अपने बच्चों से वे बात नहीं करेंगे। अमरीकी इतिहास में जोर शोर से होने वाले चुनाव की मतगणना आरंभ हो गई है। सबसे पहले यहाँ न्यू हैम्पशायर राज्य का छोटा सा शहर, ये वही जगह है जहाँ सबसे पहले अमरीका में मतदान आरंभ हुआ था। 5 लोगों ने वोट डाले थे जिनकी मतगणना हो चुकी है। चुनाव परिणामों की घोषणा के लिए उल्टी गिनती आरंभ हो गई है। बिल्कुल सही से तो कोई नहीं जानता कि विजेता का नाम कब स्पष्ट होगा, परंतु अगर दोनों में दूरी अधिक रही तो विजेता के स्पष्ट होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ओबामा खुल्लम खुल्ला अमरीकी राष्ट्रपति को तानाशाह कह रहे हैं। ट्रंप संभावित रूप से होने वाली हिंसा के प्रति चेतावनी देते हैं। फॉक्स न्यूज ने कहा है कि 306 इलेक्टोरल वोट प्राप्त कर लेंगे और ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे।
I ended up with 306.
अंत में उन्होंने इस प्रकार की बात की कि मानो वे शीघ्र अपनी विजय की घोषणा नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका के दो पूर्व महान्यायवादियों ने चुनाव परिणामों को स्वीकार न करने के बारे में ट्रंप और बाइडेन दोनों को ही चेतावनी दी है। अभी स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति कौन होगा, किंतु प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पेलोसी ने कहा है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो दोबारा उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद हिंसा की संभावना है, जिसके दृष्टिगत लोग अपनी दुकानों की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। अभी से उन्हें अपने कारोबार के मंदा होने की चिंता सताने लगी है। ऐसा लगता है कि ये मामला लंबा खिंच सकता है। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरान नजफजादे।
फिलिस्तीनियों ने रामल्लाह में बालफोर घोषणा पत्र की 130वीं वर्षगांठ पर प्रदर्शन किया। इस घोषणा पत्र में फिलिस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा करने की अनुमति दी गई थी। फिलिस्तीनियों ने गजा पट्टी में बालफोर घोषणा पत्र जारी होने की वर्षगांठ पर बल देकर कहा है कि ब्रिटेन को माफी मांगनी चाहिए और अमेरिका ने व्यवहारिक रूप से सेंचुरी डील के नाम से दूसरा बालफोर अमली कर दिया है। साथ ही अख्तर अब्बास।
फिलिस्तीनियों ने रामल्ला में बालफोर घोषणा पत्र की 130वीं वर्षगांठ पर प्रदर्शन किया। इस घोषणा पत्र में फिलिस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा करने की अनुमति दी गई थी। फिलिस्तीनियों ने इस घोषणा पत्र की जो कलंक का टीका थी भर्सना की है। बालफोर घोषणा पत्र सबसे बड़ा अपराध है जिसे फिलिस्तीन की जनता के खिलाफ किया गया है और ट्रंप सेंचुरी डील के माध्यम से इस अपराध को दोहराना चाहते हैं, किंतु जिस तरह फिलिस्तीनी जनता बालफोर घोषणा पत्र और दूसरे अपराधों के मुकाबले में प्रतिरोध कर रही है, उसी तरह वो ट्रंप की सेंचुरी डील का भी जमकर मुकाबला करेगी। बालफोर घोषणा पत्र केवल फिलिस्तीनियों के लिए मुसीबत नहीं था, बल्कि 1948 और 1967 की पराजय, ओस्लो समझौता और सेंचुरी डील फिलिस्तीनी जनता की दूसरी मुसीबतें हैं। फिलिस्तीनियों ने गजा पट्टी में बालफोर घोषणा पत्र के जारी होने की बरसी पर बल देकर कहा कि ब्रिटेन को माफी मांगनी चाहिए और अमेरिका ने व्यवहारिक रूप से सेंचुरी डील के नाम से दूसरा बालफोर अमली कर दिया है। फिलिस्तीनी इस जमीन के मूल स्वामी हैं और अपनी मातृभूमि में वापसी उनका अधिकार है। इब्राहिम अहमद, IRIB न्यूज, गजा, फिलिस्तीन।
एकता सप्ताह के उपलक्ष्य में सभाओं और जश्नों का क्रम यथावत जारी है। इसी संबंध में भारत नियंत्रित कश्मीर के बडगाम में बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों ने भाग लिया और मुसलमानों के मध्य एकता पर बल दिया।
विश्व के इस्लामी जनता के साथ साथ भारत प्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर में भी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हफ्ते वहदत के हवाले से सभाओं का आयोजन जारी है और आज एक बहुत बड़ी सभा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आयोजित हुई जिसका आयोजन उजमेरी शरीफ शिया ने किया था। इस धार्मिक सभा में तमाम धर्मों के मानने वाले धर्म गुरु ने भाग लिया जिन्होंने इस्लामी एकता पर बल दिया। जितने भी धार्मिक नेता इस अवसर पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि विश्व में जो स्थिति इस समय पैदा हुई है जरूरत इस बात की है कि इस्लामी जनता एकजुट हो जाए और उसी से उन दुश्मनों का मुकाबला किया जा सकता है।
हजरत का विलादत का दिन इस पर इतना भी खुशी का इजहार किया जाए वो कम है।
उजमेन शरी शियान के प्रमुख आगा सईद हसन अल मौसवी ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि उजमेन शरी शियान का ये लक्ष्य है कि कश्मीर में जो भी इस्लामी धार्मिक जमातें हैं उनमें एकता होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक इसमें सफल हुए हैं। आगा सईद हसन ने कहा है कि कश्मीर में भी बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए कि इस्लामी जनता में फूट डाली जाए परंतु धार्मिक नेताओं के जो उन्होंने बलिदान दिया है इस हवाले से है उसका मैं स्वागत ही नहीं मुझे उसका काफी एहतराम है। उन्होंने कहा कि विश्व के जो भी स्थिति समय पाई जा रही है उसको डिफ्यूज करने का वाहिद तरीका इस्लामी जनता की एकता है। इस अवसर पर छात्राओं ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहीं गुलाही अकीदत अदा करने के लिए नातखानी की। ये रूह परवर सभा आज दिन भर जारी रही। इस बीच गाठी के अन्य क्षेत्रों में भी हफ्ते वहदत के हवाले से समारोह आयोजन होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। तो मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा के अंत में आप सुनोगे कार्यक्रम आजकल, पर उससे पहले आप सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा।
शौर्य गाथा।
दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरिया मेहर दादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कड़ी में वलफज्र 8 सैन्य ऑपरेशन से पहले इराक के सद्दाम शासन को पश्चिमी और अरब देशों की ओर से मिलने वाली व्यापक सैन्य व आर्थिक मदद के बारे में बताएंगे।
जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रोग्राम शौर्य गाथा में 80 के दशक में ईरान पर इराक के बासी सद्दाम शासन के हमले के मुकाबले में ईरानी राष्ट्र की पवित्र प्रतिरक्षा और इस दौरान ईरानी राष्ट्र के वीर सपूतों के शौर्य के बारे में आपको बता रहे हैं। ईरान पर थोपी गई जंग का 5वां साल ऐसी हालत में गुजरा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान हर तरह की आर्थिक व सैन्य पाबंदियों के बावजूद कई ऐसे सैन्य ऑपरेशनों में अपनी वरीयता को उस पर साबित कर चुका था जिसकी भनक इराक की बासी सेना को नहीं लग सकी थी। यह ऐसी हालत में था कि सद्दाम के बासी शासन को हर तरह की वित्तीय, आर्थिक, राजनैतिक व सैन्य और गुप्तचर सेवाएं दूसरों से हासिल थीं।
सद्दाम ने जो जंग के मैदान में हार चुका था, ईरान के शहरों पर मिसाइल व हवाई हमलों तथा फारस की खाड़ी में ईरान के तेल टर्मिनल व तेल टैंकरों पर हमले और इसी तरह बड़े पैमाने पर केमिकल बम के इस्तेमाल से जंग के मैदान में जंग की प्रक्रिया पर असर डालने की कोशिश की। खार्क द्वीप में तेल के प्रतिष्ठानों पर इराक के हमलों के मुकाबले में ईरान ने जंग के शुरू के वर्षों में अलबिक्र और अल उम्मिया तेल के प्लेटफॉर्मों को
निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की ताकि फारस की खाड़ी से इराक के तेल के निर्यात को रोका जा सके। फारस की खाड़ी में इराकी जेटियों और तेल के प्रतिष्ठान नहीं थे, इसलिए इराक के भीतर तेल के प्रतिष्ठानों पर ईरान की ओर से जवाबी बमबारी का विकल्प बहुत सीमित था।
फ़ारस की खाड़ी में इराक के हमलों में तेजी आने पर ईरान का खामोश न रहना स्वाभाविक सी बात थी। इसीलिए इस्लामी गणतंत्र ईरान ने अपने तेल टैंकरों को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने के लिए डिफेंसिव कार्रवाई और तेल टैंकरों की जंग में निवारक शक्ति हासिल करने के लिए आक्रामक कार्रवाई की। इसके साथ ही तेल टैंकरों व जहाजों की रक्षा करने वाली कुछ कंपनियों से समझौता भी किया ताकि अगर जहाज को नुकसान पहुंचे तो तुरंत उसे बचाने की कार्रवाई की जा सके। दूसरी ओर खार्क द्वीप से तेल निर्यात के टर्मिनल के स्थान को धीरे धीरे सीरी द्वीप पहुंचाया गया और फिर हुर्मुज स्ट्रेट में लार्क द्वीप के आसपास उसे कायम किया गया।
इसके अलावा जहाज के कैप्टन को जहाज को निर्देशित करने के स्थान को बदलकर जहाज के अगले भाग में कायम करने की सिफारिश की। कुछ क्षतिग्रस्त जहाजों पर झूठे टारगेट सेट किए ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा रडार के सिग्नल निकलें और वे दुश्मन के मिसाइलों को अपने ऊपर ले लें, बाकी जहाज उसके पास से सुरक्षित गुजर जाएं।
राजनीतिक दृष्टि से भी ईरान ने कहा था कि अगर इराक के बासी शासन ने फारस की खाड़ी को अशांत किया तो ये क्षेत्र दूसरे देशों के लिए भी फिर सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी तरह ईरान ने यह भी कहा था कि अगर ईरान का तेल निर्यात रुका तो हुर्मुज स्ट्रेट से तेल का निर्यात भी बंद हो जाएगा। यह अलग बात है कि ईरान ने कभी भी इस धमकी पर अमल नहीं किया। दूसरी ओर ईरान ने फारस की खाड़ी में निवारक शक्ति हासिल करने के लिए कुछ आक्रामक कार्रवाइयों का फैसला किया।
ईरान की नौसेना फारस की खाड़ी में शिपिंग लाइन की सुरक्षा की नज़र से हमेशा निगरानी करती रही। इराक की वासी सेना के फारस की खाड़ी में ईरान के तेल के प्रतिष्ठानों, द्वीपों और जहाज़ों पर हमले बढ़ने लगे। ईरान की नौसेना ने फारस की खाड़ी से इराक के तेल निर्यात और जंगी सामान को रोकने के लिए क्षेत्र में जहाज़ों की निगरानी शुरू की। पूरी जंग के दौरान जहाज़ों की निगरानी कभी रेडियो संपर्क और ज़रूरत पड़ने पर जहाज़ के भीतर आँखों से देखकर होती थी। इस बात के मद्देनजर कि फारस की खाड़ी में किसी भी तरह जंग का फैलना और तेल टैंकरों व तेल के टर्मिनल पर हमले ईरान के लिए नुकसानदेह होता, इसलिए ईरान की ये कोशिश रहती थी कि वो फारस की खाड़ी में इराक की जंगी नीतियों के निशाने पर न आए, लेकिन खार्क द्वीप, तेल के कुओं और जहाज़ों पर इराक के हमले बढ़ने पर ईरान वायुसेना की मदद से इराक की कार्रवाई का उसी तरह जवाब देने पर मजबूर हुआ।
फारस की खाड़ी में तेल के टैंकरों और जहाज़ों पर इराक के बढ़ते हमले और ईरान की उसी तरह की जवाबी कार्रवाई के बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री सऊद अल फैसल ने 19 मई सन 1985 को ईरान का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने ईरान के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने ईरान के तत्कालीन संसद सभापति अकबर हाशमी रफसंजानी के जवाब में, जिन्होंने इराक को सऊदी अरब की मदद की आलोचना की थी, कहा, इराक की भूमि पर ईरान के हमले के बाद हमने इराक की मदद करना शुरू की। सऊद अल फैसल ने युद्ध विराम की अपील की थी। इसके जवाब में ईरान के संसद सभापति ने कहा कि पहले आप इराक को हमलावर देश मानिए और हमलावर के खिलाफ मुकदमे के लिए अदालत कायम कीजिए, तो उस वक्त ईरान भी युद्ध विराम को कबूल कर लेगा। सऊदी विदेश मंत्री ने कहा था कि वो अदालत कायम होने के समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने इराक के हमले पर आपत्ति को मुकदमा कायम होने से पहले कबूल नहीं किया।
1985 میں ولفجر 8 سین آپریشن شروع کرنے تتھا فاو بندرگاہ پر نینترن سے پہلے عراقی واسی سینا کی کشمتا بڑھ گئی تھی. اس سال عراق سرکار نے دیش کے وارشک سکل گھریلو اتپاد کے آدھے بھاگ کو جو لگ بھگ 14 ارب ڈالر تھا ہتھیاروں یدھوپکرنوں اور ضروری ہتھیار بنانے والی پرودیوگکی کی خریداری اور جنگ کے خرچ کے لیے وشیش کیا. اس سال عراق کی باسی سینا کو ایرانی سینا پر پوری طرح وریتا حاصل تھی. عراقی سینا کے پاس بمبار ویمان توپولوف ویمان کے وبھن ماڈل فائٹر جیٹ MiG-21 MiG-23 اور MiG-25 اور فائٹر جیٹ Sukhoi-5 اور Sukhoi-22 اور Mirage-F1 بمبار ویمان اور اینٹی سرفیس میزائل لے جانے والے سپر انٹینڈرڈ ویمانوں سہیت وبھن پرکار کے لگ بھگ 600 فائٹر جیٹ تھے. اس سمے فرانس نے عراق کو فائٹر جیٹ کے ساتھ پائلٹ بھی بھیجے تھے. اس سمے عراقی وایو سینا ایرانی وایو سینا سے قریب 4 گنا مضبوط تھی.
سن 1985 میں سعودی عرب کویت اور یو اے ای سہیت عرب دیشوں کی اور سے عراق کو پیسوں کی مدد بھی ملتی رہی اور یہ دیش راجنیتک آرتھک مانسک اور پراچارک آیام سے بھی صدام کا ساتھ دے رہے تھے. مصر اور جارڈن جیسے شاسن بھی راجنیتک پرچارک و سینی مدد کی دشٹی سے صدام کے ہی ساتھ تھے. یورپی دیشوں کی اور سے عراق کے باسی شاسن کو ہتھیاروں کا نریات بڑھ گیا تھا. فرانس نے عراق کے باسی شاسن کو فائٹر جیٹ میراج F-1 2000 کے علاوہ لیزر بم اور رڈار کو چکما دینے والے میزائل دیے تاکہ وہ ایران کے تیل ٹرمینل پر حملہ کر سکیں.
جرمنی نے صدام شاسن کو کیمیکل ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی دی. پورو سوویت سنگھ نے بھی ویمان ہیلی کاپٹر ٹینک آرمڈ واہن زمین سے زمین پر لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل سہیت اپنے آدھونک ہتھیار اس شاسن کو دیے. اس کے علاوہ صدام شاسن نے ریگستانی علاقے میں استعمال ہونے والی توپیں آسٹریا سے حاصل کی تھیں جن کی مارک کھمتا 45 کلومیٹر سے زیادہ تھی.
عراق کی باسی سینا خارک دویپ میں تیل کے پرتشٹھان پر حملے سہت ایران کے تیل کی بندرگاہوں اور تیل ٹینکروں پر حملے کے ذریعے جنگ کو فارس کی کھاڑی میں پھیلانا چاہتی تھی. دوسری اور صدام شاسن رکشاتمک سینیہ تعیناتی اور ڈیفنسو سسٹم کے ساتھ زمینی مورچوں پر بھی مضبوط رہنے اور ساتھ ہی ایرانی جنتا پر مانسک دباؤ کے لیے خاص موقعوں پر شہروں تک جنگ کے دائرے کو بڑھانے کی کوشش میں رہتا تھا. اس سال عراق کی باسی سینا ایران کے سدور شہروں پر ہوائی حملہ کرنے میں سکشم ہو گئی تھی.
اس کے علاوہ وہ ایران کے آرتھک کیندروں پر بھی ہوائی حملے کرتی تھی. 1985 میں ہی ایران کی سینیہ گتیویدھیوں کو سعودی عرب میں تعینات ایئربورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم میں لیس جاسوسی ویمان کے ذریعے نینترت کرنے کے لیے امریکہ کی اور سے جاسوسی مدد بڑھ گئی اور امریکہ نے کرشی مدد کے نام پر صدام شاسن کو بہت زیادہ قرض دیے. ایسے حالات میں وشال ولفجر 8 سینیہ آپریشن انجام پایا جس کی دشمن کو بھنک بھی نہیں لگ پائی اور اس آپریشن سے ایرانی فورسز کی تیاری اپنے چرم پر ظاہر ہوئی. دوستو اس سینیہ آپریشن کے بارے میں اگلے کارکرم میں بتائیں گے. تب تک کے لیے انومتی دیجیے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا. تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے. और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहतादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम फेसबुक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नीति के बारे में चर्चा करेंगे।
मित्रों, उस्मान इस्माइल नामक लेबनानी लेखक ने एक बार होलोकास्ट और ज़ायोनिज्म के बारे में लिखा था कि होलोकास्ट के कारण ज़ायोनी इतिहास से भयभीत हैं। इसका कारण यह है कि उसे भय है कि लोग जनसंहार, गैस चैम्बर और यहूदियों को जलाए जाने के झूठ को कहीं न पहचान जाएं। होलोकास्ट के बारे में लेबनानी लेखक जैसे बहुत से लोगों के विचार आजकल सामने आ रहे हैं, जिसके कारण होलोकास्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जाता है कि जर्मनी में होलोकास्ट से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं।
ये दस्तावेज आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। केवल कुछ गिने चुने विशेष लोगों तक ही उनकी पहुंच संभव है। कोई आम इंसान होलोकास्ट की जानकारी एकत्रित करने के लिए इन दस्तावेजों तक पहुंच ही नहीं सकता। जब से होलोकास्ट के बारे में लोगों ने अपनी शंकाएं पेश करना शुरू की, उस समय से ज़ायोनियों ने इसके मुकाबले के लिए किताबों के प्रकाशन, फिल्में बनाने और लोगों के संदिग्ध इंटरव्यू पेश करने जैसे प्राचारिक काम आरंभ कर दिए, ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। वे आज भी इस काम में व्यस्त हैं।
इस समय होलोकास्ट और फेसबुक का मुद्दा इस विचार को मजबूत बना रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में घटने वाली एक घटना से संबंधित सही सूचनाओं के सार्वजनिक होने से ज़ायोनी बहुत चिंतित हैं। अभी हाल ही में फेसबुक के प्रमुख ने होलोकास्ट के बारे में नई नीति की घोषणा की है कि जिसके आधार पर होलोकास्ट का इनकार करने वाले या इस बारे में संदेह उत्पन्न करने वाली पोस्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नाजियों द्वारा किए गए जनसंहार के बारे में जानकारी हासिल करने का मार्गदर्शन अब फेसबुक के अनुसार विश्वसनीय विकल्प की ओर कर दिया जाएगा।
ज़ायोनियों ने फेसबुक के नए फैसले का हार्दिक स्वागत किया है। उनका कहना है कि होलोकास्ट का इनकार न केवल एक ऐतिहासिक वास्तविकता का इनकार है, बल्कि ये एक प्रकार से यहूदी विरोधी दुष्प्रचार है। ज़ायोनी शासन के विदेश मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2020 को अपने अकाउंट पर फेसबुक के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा था कि होलोकास्ट का इनकार यहूदी विरोधी दुष्प्रचार का हिस्सा है।
फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग ने लगभग 2 साल पहले अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि वे होलोकॉस्ट का इनकार और यहूदी विरोधी बातों को पूरी तरह से फेसबुक पर प्रतिबंधित नहीं कर सकते। जुकरबर्ग ने कहा था कि वे स्वयं यहूदी हैं और यहूदी विरोधी बातों से उनको दुख भी होता है, किंतु वो उनके कथनानुसार फेसबुक का ये कर्तव्य नहीं है कि वो उन पोस्ट को डिलीट करे जिनके बारे में ये शंका जताई जाती है कि वे गलत हैं।
ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फेसबुक या इस प्रकार के अमेरिका की दूसरी कोई कंपनी होलोकास्ट जैसी घटना की सुरक्षा करे। अब की बार फेसबुक ने न केवल एक ही होलोकास्ट पर की जाने वाली आलोचना को प्रतिबंधित किया है, बल्कि वे लोग जो होलोकास्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं उनको चैनलाइज कर दिया है। अब अगर कोई यूज़र सोशल मीडिया पर होलोकास्ट शब्द को सर्च करेगा तो उसको फेसबुक कथित विश्वसनीय स्रोत की ओर मोड़ देगा।
इस बारे में फेसबुक ने लिखा है कि होलोकास्ट को लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसा जो मुद्दा उठा है, उसके दृष्टिगत इस बात के प्रयास में है कि होलोकास्ट के इनकार से जो नुकसान हो रहा है उसको कम से कम किया जाए। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस प्रकार की कार्यवाही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दावेदारों ने किया हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अपनाई जाने वाली दो मुख्य नीति पर अब तक राजनेताओं और धर्मगुरुओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस दो मुख्य नीति का ताजा उदाहरण फ्रांसीसी पत्रिका की ओर से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमानजनक कार्टून का प्रकाशन है, जिस पर मुसलमानों की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
आइए देखते हैं कि होलोकॉस्ट है क्या। दूसरे महायुद्ध के दौरान विश्व का बहुत बड़ा भाग इससे प्रभावित हुआ था, किंतु इसके केंद्र में यूरोप था। द्वितीय विश्व युद्ध में संसार दो हिस्सों में बंट चुका था। इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। दूसरे महायुद्ध के दौरान अधिक नुकसान जर्मनी, सोवियत संघ, जापान और चीन को हुआ, जिसके बाद दूसरे यूरोपीय देशों को हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे कम नुकसान उठाना पड़ा, जबकि सबसे अधिक लाभ इससे उसने ही उठाया।
होलोकॉस्ट की घटना भी इसी दौरान की है। यहूदियों का ये दावा है कि दूसरे महायुद्ध के दौरान हिटलर ने जर्मनी और दूसरे देशों से यहूदियों को पकड़कर एक स्थान पर इकट्ठा करने का आदेश जारी किया था। उसके बाद यहूदियों को कैंपों में एकत्रित करके उनकी हत्याएं करवाईं। यहूदियों का कहना है कि हिटलर के हाथों 10 लाख यहूदी मारे गए थे, किंतु बाद में उन्होंने कहा कि मारे जाने वाले यहूदियों की संख्या 6 मिलियन अर्थात 60 लाख थी। अब यहूदी एकमात्र होकर ये दावा कर रहे हैं कि बंदी गृहों में 60 लाख से अधिक यहूदियों का जनसंहार किया गया था। इस जनसंहार को होलोकास्ट का नाम दिया गया। होलोकास्ट का अर्थ होता है आग से पूरी तरह जलाना। होलोकास्ट यूनानी शब्द है।
जानकार हलकों का मानना है कि ज़ायोनियों ने होलोकॉस्ट की जो कहानी गढ़ी है उसके कई लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य राजनीतिक था। ज़ायोनियों का दावा है कि चूंकि यहूदियों पर अत्याचार हुआ है, इसलिए उनको एक अलग सरकार के गठन का कानूनी अधिकार है। इसी को आधार बनाकर वे इसराइल के अवैध अस्तित्व का औचित्य दर्शाते हैं। होलोकॉस्ट से ज़ायोनियों का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके माध्यम से वे स्वयं को अत्याचारग्रस्त दर्शाकर विश्व जनमत में अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाते रहें। जानकार हलकों का ये भी कहना है कि यहूदी जो ये दावा करते हैं कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को भट्टी में जलाकर मारा है, तो उनके इस दावे के गलत होने की एक दलील खुद यही उनका दावा है। इसका एक कारण यह है कि उस समय पूरे यूरोप और पश्चिमी देशों में यहूदियों की कुल जनसंख्या इतनी थी ही नहीं। जब पूरे यूरोप में इतने यहूदी नहीं थे, तो हिटलर ने कहां से 60 लाख यहूदियों को जर्मनी भट्टियों में जलाकर मार दिया।
यही नहीं, होलोकॉस्ट से ज़ायोनियों का एक आर्थिक लक्ष्य भी है। होलोकॉस्ट अब इसराइल के लिए एक बहुत अच्छे उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है, जिससे वे खूब लाभ कमाते हैं। विश्व के बहुत से देश अब तक अरबों डॉलर का दान इसराइल को दे चुके हैं, जिनमें सबसे आगे अमेरिका है। अमेरिका हर साल 3 अरब डॉलर से अधिक का दान इसराइल को देता है। जर्मनी सरकार 150 अरब मार्क से अधिक ज़ायोनियों को अब तक हर्जाना दे चुकी है। थोड़े बहुत अंतर के साथ यही हाल दूसरे यूरोपीय देशों का भी है।
संसार के अधिकांश शोधकर्ताओं का मानना है कि होलोकॉस्ट एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसका एक लक्ष्य विश्व जनमत में ज़ायोनियों के प्रति सहानुभूति पैदा करना है। होलोकॉस्ट नामी उद्योग से इसराइल को केवल भारी आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि इससे उसको कूटनीतिक लाभ भी पहुंच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों की ओर से इसराइल का समर्थन इसका स्पष्ट उदाहरण है। अब होलोकॉस्ट के बारे में संदेह करने पर भी कुछ देशों में सजा का प्रावधान है।
ज़ायोनी दबाव के कारण विश्व के कई देशों में होलोकॉस्ट पर संदेह जाहिर करने को अपराध माना गया है। जिन देशों में होलोकॉस्ट पर संदेह जाहिर करना अपराध है, उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड। विशेष बात यह है कि इनमें से बहुत से देशों में इस्लाम और मुसलमानों की आस्थाओं के अपमान को अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का नाम दिया जाता है।
हालांकि ये एक वास्तविकता है कि होलोकॉस्ट के बारे में खोजबीन जायनियों को बदनाम करने की कोशिश नहीं है, बल्कि लोगों के सामने इस वास्तविकता को लाना है कि जायनी होलोकॉस्ट नामक मुद्दे का दुरुपयोग करके अपने दृष्टिगत लक्ष्यों को दशकों से हासिल कर रहे हैं। विश्व में ऐसे बहुत से यहूदी संगठन हैं जो प्रतिवर्ष करोड़ों डॉलर खर्च करके होलोकॉस्ट के मुद्दे को हमेशा जिंदा रखने का प्रयास करते रहते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि जिस झूठ को उन्होंने फैलाया है वो आगे भी बाकी रहे और कोई भी उसके विरुद्ध न बोले। इस बात की पुष्टि के लिए इस घटना का उल्लेख काफी है।
जनवरी 2020 को अवैध जानवी शासन में 50वीं होलोकॉस्ट समिति आयोजित की गई। इस बैठक में पोलैंड के राष्ट्रपति को भी निमंत्रित किया गया था। उनको निमंत्रण देने के बावजूद जानवी ने पोलैंड के राष्ट्रपति को इस सम्मेलन में बोलने की अनुमति नहीं दी। जानियों को ये डर था कि कहीं वे होलोकॉस्ट के बारे में सही बातें न करने लगें। जानियों के क्रियाकलापों से स्पष्ट होता है कि होलोकॉस्ट के बारे में वे कुछ जरूर छिपा रहे हैं या फिर इसके बारे में विश्व समुदाय को गलत जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। होलोकॉस्ट के संबंध में फेसबुक की नई नीति के बारे में इसके संस्थापक का बयान लोगों के मन में कई तरह का सवाल पैदा करता है। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है और श्रोताओ, सभा के अंत में आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा है कि तेहरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में क्या हो रहा है और कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। आईआरजीसी ने बुधवार को एक नए मिसाइल सिस्टम का अनावरण किया है जो निरंतरता के साथ फायर करने की क्षमता रखता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना जारी है। अब तक जो बाइडेन ट्रंप से आगे चल रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। और इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। खुदा हाफिज़।